भारत का आम समाज अक्सर सरकारी सेवाओं की शिकायत करता रहता है। सरकारी सेवाओं की आलोचनाओं के पक्ष में आम लोगों सहित तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों तक का मानना है कि खुले बाजार से किसी भी क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में कंपटीशन बढ़ेगा, जो आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देगा। इस एक तर्क के सहारे सरकार ने सभी सेवाओं को बाजार के हवाले छोड़ दिया। इसमें जिन सेवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसका खामियाजा गरीब मजदूर और आम लोगों को भुगतना पड़ता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की अंजलि बागमारे की मृत्यु के बाद उनका परिवार आज भी वही कर्ज चुका रहा है जो उन्होंने अंजलि की डिलीवरी के लिए साहूकार से लिया था। संगीता का मामला भी ऐसा ही है। तीसरे बच्चे की पैदाइश के समय उनके परिवार ने भी 15,000 रुपए का कर्ज लिया था। संगीता की पहली दो बेटियां थीं और अब की बार उनके परिवार को बेटे की जन्म की उम्मीद थी। बेटे के जन्मदिन पर उत्सव मनाने की परंपरा में वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तान्या अपनी रिपोर्ट में बताती हैं कि महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाले परिवार जो कि प्रवासी मजदूर भी हैं, वह संस्थागत डिलीवरी के लिए औसतन 30,000 रुपए का भुगतान करते हैं। सरकार मातृ वंदन योजना और जननी सुरक्षा योजना के जरिए नगद कैश हस्तांतरण करती है। मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा काम से ली जाने वाली छुट्टी के कारण होने वाली नुकसानी की आंशिक भरपाई करना है, जबकि दूसरी योजना का उद्देश्य संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना है। साल 2022 में सरकार ने मातृ वंदना योजना को फिर से शुरू किया, जो अब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की सहयोगी योजना के तौर पर काम करती है। इस योजना का तब लाभ मिलता है जब दो बच्चों में एक बेटी हो। इसके पीछे सरकार चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों को कम करना चाहती है। साल 2022 तक इस योजना के तहत सरकार लाभ राशि का भुगतान 3 किश्तों में करती थी और अब इसे 2 ही किश्तों तक सीमित कर दिया गया है। आदर्श स्थिति में इसमें भुगतान की रकम और किश्तों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी। मिशन शक्ति की गाइडलाइंस के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के हितधारकों को औसतन 6,000 रुपए मिल सकते हैं, जिसमें मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए का किस्तवार भुगतान शामिल है। दूसरे जीवित बच्चों के जन्म के लिए डिलीवरी के बाद एक किस्त में 6,000 रुपए तक जारी किए जाते हैं। साल 2023 में अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के एक विश्लेषण से पता चला कि मातृ वंदना योजना के तहत मुद्रास्फीति समायोजित में कम से कम 1,600 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इसी तरह की योजनाओं में नगद ट्रांसफर की रकम को 10,000 रुपए और 18,000 रुपए तक संशोधित किया गया है। साल 2021 में 72% योग्य नागरिक आधार से जुड़े थे और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 98% हो गया, लेकिन उसी साल कम गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं ने योजना के तहत लाभ की मांग की, जो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। एक तरफ सरकार योजना का दायरा बढ़ा रही है, दूसरी तरफ इनमें मिलने वाला लाभ घटता जा रहा है। साल 2022-23 में जहां 3 करोड़ के लगभग गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं को भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि 2023-24 में केवल 22 लाख को ही भुगतान मिला, यह एक चिंताजनक स्थिति है। इन तमाम योजनाओं की स्थिति और सरकारी अस्पतालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किस तरह बुनियादी सुविधाओं के ढांचे को खत्म करने पर तुली है। 3 साल पहले कोविड महामारी ने भी इसकी वास्तविकता उजागर कर दी थी। तब बहुत से लोगों ने सरकार की नाकामी और निजी अस्पतालों के मुनाफे की हवस पर सवाल उठाया। उसके बाद भी व्यवस्था में बहुत बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सरकारी सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि निजी व्यवस्थाएं अच्छी भले ही हों लेकिन बेहद महंगी होती हैं, जिसे आम आदमी वह नहीं कर पाता। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताएं। अपनी राय को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर डाउनलोड करें मोबाइल वाणी की ऐप। यह आर्टिकल नारीवादी दृष्टिकोण की नजरिए से बहन बॉक्स के आम चुनाव 2024 कवरेज का हिस्सा है, जो कि तान्या राणा द्वारा शोध करने के बाद लिखा गया है। इसका अनुवाद और पटकथा प्रांजलि शर्मा ने लिखी है।